بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمب پوتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری ہوشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں۔ क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir, जबकि हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहें तो इसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0098-90-350-65492। श्रोताओं, आज शनिवार है, उर्दी बहिश्त की 4, रमज़ान के पवित्र महीने की 11 और अप्रैल की 24 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, फिर आप सुन सकेंगे दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। उसके बाद हम आपको रमजान के महीने का विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य सुनवाएंगे। और दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसे देश में आने से रोकना होगा। भारत में कोरोना वायरस की सुनामी के कारण मोदी विदेशी मीडिया के निशाने पर हैं। ईरान ने भारत और पाकिस्तान से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। फिलिस्तीनियों ने इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब आप मरियम मेरदादी और हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति ने कोरोना से संघर्ष की राष्ट्रीय समिति की बैठक में सभी के लिए कोरोना की वैक्सीन के मुफ्त होने की घोषणा करते हुए कहा है कि जो लोग क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ सही रवैया अपनाना जरूरी है। डॉक्टर हसन रूहानी ने शनिवार को इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि आंकड़ों व रिपोर्टों के अनुसार देश के अधिकतर प्रांत अब भी कोविड 19 की बीमारी के पीक या चरम की राह पर हैं और संक्रमित होने वालों, अस्पतालों में भर्ती होने वालों और मरने वालों के आंकड़े बताते हैं कि हालात अब भी चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि जारी सप्ताह में और संभावित रूप से अगले सप्ताह में निगरानी बढ़ा दें। उन्होंने मेडिकल प्रोटोकॉल के पूर्ण पालन और देखभाल बढ़ाने पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि उन सभी विभागों को जिन पर किसी न किसी रूप में निगरानी का दायित्व है, निगरानी बढ़ा देनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों के पालन में वृद्धि हो, वरना हम इस लहर को पार नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति रूहानी ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि आज हमारे सामने एक और खतरा है और वो कोरोना का इंडियन वेरिएंट या भारतीय वायरस है, कहा कि भारतीय वायरस ब्रिटिश, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से भी ताकतवर है और अगर ये वायरस देश में आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों से मांग की कि वे इस खतरनाक वायरस को देश में आने से रोकने की हर संभव कोशिश करें।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तार तार कर दिया है। फॉरेन प्रेस ने उन्हें ऐसा नायक कहा जो अपनी गलत नीतियों की वजह से खलनायक में तब्दील हो चुका है। दुनिया के बड़े अखबारों का कहना है कि मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि कोरोना को वो हरा चुके हैं, पर वो गलत था। फॉरेन प्रेस के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में सबसे कड़ी राष्ट्रव्यापी तालाबंदी या लॉकडाउन लगाकर मोदी ने वायरस को काफी हद तक रोक दिया था। अलबत्ता दूसरी लहर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हालात ये हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो मरीजों की लाश मुर्दा घरों में इधर उधर पड़ी है। द गार्डियन ने अपनी मेन स्टोरी में जो फोटो लगाया है उसमें शमशान में जल रही चिता की ऊंची लपेटों को दिखाया गया है। इसकी हेडिंग का हिंदी अनुवाद है, सिस्टम ढह गया, भारत कोविड के नरक में गिरता हुआ। द टाइम्स लंदन ने भी मोदी पर जोरदार हमला किया। अखबार की हेडलाइन है, दूसरी सुनामी में फंसे मोदी। अखबार ने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा, रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सरकार ने हालात की गंभीरता को नजरअंदाज किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई। ये वाकई बेहद गंभीर हालात हैं। अखबारों का कहना है कि सरकार की नासमझी की वजह से ये संकट पैदा हुआ।
ईरान के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान से भारत और पाकिस्तान के बीच उड़ान अगली सूचना तक के लिए बंद कर दी गई है और ये प्रतिबंध शनिवार की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। मोहम्मद हसन जी बख्श ने बताया कि हवाई यात्रा के लिए सीमाओं के मेडिकल प्रोटोकॉल और इसी तरह भारत और पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरियंट्स मिलने के बाद ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले के आधार पर इन दोनों देशों और ईरान के बीच उड़ानों को आज रात से बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ईरान व भारत के बीच रूटीन की उड़ानें जारी नहीं थीं। उन्होंने इसी तरह कहा कि इन देशों से कनेक्टेड फ्लाइट के यात्रियों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय 41 देशों की उड़ानों पर सीमितताएं हैं और जो देश विशेष सूची में शामिल हैं उनके और ईरान के बीच उड़ान पर प्रतिबंध है और जो देश कोरोना की दृष्टि से खतरनाक देशों की सूची में शामिल हैं उनके यात्रियों को ईरान पहुंचने पर फिर से कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का पीसीआर टेस्ट केवल उन्हीं लैब्स का विश्वसनीय माना जाएगा जिनकी पुष्टि ईरान के विदेश मंत्रालय ने की होगी।
उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर ग्लेशियर फटा, 2 की मौत, 300 की जान बचाई गई। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर जोशीमठ स्थित नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की खबर है। ये घटना शुक्रवार देर रात घटी जिसके बाद सेना ने लोगों की जान बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने इस दौरान 2 शव बरामद किए जबकि ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र में सड़क बनाने का काम कर रहे 300 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। जोशीमठ में मौसम खराब होने की वजह से आगे कोई भी ऑपरेशन चलाने में देर हो रही है। सेना ने बयान जारी किया जिसके अनुसार जहां यह हादसा हुआ वहां सड़क के पास ही BRO का कैंप लगा था। इसके अलावा सेना का एक और कैंप BRO के सामने स्थित कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस जगह यह घटना हुई वहां पिछले 5 दिन से भारी बारिश और बर्फबारी हुई है।
ज़ायनी सेना ने गजा पट्टी पर शनिवार तड़के तोपखाने से हमला किया। अलमयादीन टीवी चैनल के मुताबिक ज़ायनी सेना ने इस हमले में गजा के केंद्र में स्थित बुरैज और करारा इलाके में खेती की जमीन को निशाना बनाया। रिपोर्ट मिलने तक इस हमले में हुए संभावित जानी व माली नुकसान का ब्यौरा जारी नहीं हुआ था। ज़ायनी सेना ने हालिया महीनों में गजा के इलाकों पर तोपखाने, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और टैंकों से बारम्बार हमले किए हैं।
बैतुल मुकद्दस और गजा पट्टी पर इसराइल के हालिया हमलों का फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों ने रॉकेट हमलों से जवाब दिया है जिसके बाद इसराइल अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में हर तरफ सायरन गूंजने लगे और लोगों ने डर कर शेल्टरों में पनाह ली। शनिवार को इसराइली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गजा से फिलिस्तीनी गुटों ने 36 रॉकेट फायर किए जिसके बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई। इसराइली अधिकारियों का दावा है कि अधिकांश मिसाइल खाली जगहों पर आकर गिरे हैं और 6 को आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराया। रॉकेटों की बारिश गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी और बैतुल मुकद्दस में रोजेदार फिलिस्तीनियों पर हिंसक हमलों के बाद की गई है जिसमें 100 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। बैतुल मुकद्दस में टकराव तथा गजा पर नए इसराइली हमलों पर फिलिस्तीनी गुटों की तीव्र प्रतिक्रिया और फिलिस्तीनियों की एकजुटता अभूतपूर्व है।
सीरिया पर हवाई हमला करने वाले इसराइली लड़ाकू विमानों को सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली के मिसाइल ने इतनी ऊंचाई और दूरी पर जाकर निशाना बनाया कि इसराइली पायलटों की सांसें थम गईं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हालिया हवाई हमले के दौरान सीरियाई मिसाइल रक्षा प्रणाली और इसराइली लड़ाकू विमानों के बीच की आंख मिचौली से पर्दा उठा है। इसराइली विमानों को निशाना बनाने के लिए सीरिया ने जो मिसाइल फायर किया था उसका नाम SAM-5 है, जिसने उन लड़ाकू विमानों को टारगेट किया जो सीरियाई सीमा से बाहर थे और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसराइली लड़ाकू विमान 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले सीरियाई मिसाइल को तो गच्चा देने में सफल रहे, लेकिन यह मिसाइल परमाणु केंद्र डिमोना के निकट जाकर गिरा, जिसका मतलब है कि पूरा इसराइल सीरियाई मिसाइलों की रेंज में है। यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कुछ समय पहले तक इसराइली लड़ाकू विमान आसानी से सीरियाई सीमा के निकट उड़ान भरकर सीरिया के भीतर लक्ष्यों को निशाना बनाते थे और सुरक्षित वापस लौट जाते थे, लेकिन सीरियाई वायुसेना ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है, जिससे अब शक्ति का संतुलन बदल गया है।
बगदाद के करीब अमरीकी छावनी विक्ट्री में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार एयर डिफेंस सिस्टम बदला गया। इराकी न्यूज एजेंसी नास के अनुसार शुक्रवार तड़के विक्ट्री छावनी पर रॉकेट से हमला हुआ। पिछले हफ्ते इस छावनी पर एयर डिफेंस सिस्टम CRAM लगाया गया था, जो रॉकेट हमले को नाकाम बनाने में असफल रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार इस हमले के बाद विक्ट्री छावनी में दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया और इस छावनी में भी खतरे का अलार्म बजा, जिसका कारण फौजियों की तैयारी बताया गया। नया एयर डिफेंस सिस्टम लगने के बावजूद अमरीकी फौजी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन इलाके में हवाई गश्त कर रहे हैं। बगदाद में अमरीकी दूतावास और विक्ट्री छावनी में लगा एयर डिफेंस सिस्टम पिछले हफ्ते से अब तक हर दिन अंधाधुंध फायरिंग कर चुका है, जिसकी वजह से आसपास के रहने वालों में नाराजगी पाई जाती है, क्योंकि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है।
इराक में सदर धड़े के प्रमुख ने संसदीय चुनाव को रद्द या विलंबित कराए जाने के लिए कुछ पक्षों की कोशिशों के बारे में चेतावनी दी है। मुक्तदा सदर ने एक ट्वीट करके कहा है कि देश में कुछ ऐसे पक्ष हैं जो ये चाहते हैं कि संसदीय चुनाव को विलंबित या रद्द करा के देश की सुरक्षा को तबाह कर दें। उन्होंने कहा है कि ये पक्ष कुछ कार्रवाइयां करके इराक से अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने से रोकना चाहते हैं और इसी तरह वे चाहते हैं कि इराक को सीरिया व इसराइल के विवाद से जोड़ दें। इराक के सदर धड़े के प्रमुख ने सभी को विदेशी एजेंडों व अन्य देशों के आज्ञा पालन से दूर रहते हुए एक समग्र शांति की ओर आमंत्रित किया है और कहा है कि इराक को शांति की जरूरत है, ऐसी शांति जो बास पार्टी के बिना हो, आतंकवाद के बिना हो, अवैध कब्जे के बिना हो, इसराइल से संबंधों के बिना हो, हिंसा के बिना हो और युद्ध व हत्या के बिना हो। याद रहे कि इससे पहले इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने 10 अक्टूबर को देश में संसदीय चुनाव कराने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे और उसकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी पर बल दिया था।
सऊदी अरब के बुलडोजरों ने रात के समय देश के पूर्वी शहर कतीफ के करीब शिया मुसलमानों की एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। सऊदी अरब के सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि कतीफ शहर के उपनगरीय गांव उम्मुल हम्मा में एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि सऊदी अरब के बुलडोजरों ने रात के समय सड़क चौड़ी करने के बहाने इस मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पिछले 5 महीने में यह दूसरी मस्जिद है जो सऊदी सरकार के हाथों ध्वस्त की गई। दिसंबर 2020 में भी आले सऊद ने अल अवामिया शहर में स्थित इमाम हुसैन मस्जिद को ढा दिया था। यह वही मस्जिद थी जिसमें शहीद शेख वाकिर अनिम्र नमाज पढ़ाया करते थे।
यमन पर हमलावर सऊदी गठबंधन ने हुदैदा में 24 घंटे में 261 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक यमन के एक सैन्य सूत्र ने बताया कि सऊदी हमलावरों और उनके किराए के टट्टुओं ने पश्चिमी प्रांत हुदैदा में पिछले 24 घंटे में 261 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इससे पहले भी सऊदी गठबंधन हुदैदा में कई बार एक दिन में 100 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। इस उल्लंघन के दौरान 160 बार फायरिंग हुई, दसियों मिसाइल और गोले फायर हुए और कई ड्रोनों ने उड़ान भरी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे फिलिस्तीन में जारी मुसलमानों पर अत्याचारों के बारे में,
तनामुल अवासिमुल अरबिया व तसहुल कुद्स अला मुवाजहत,
और फिर बात करेंगे यमनी सेना द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई की,
अमलियतुन अस्करियतुन फदतल कुवतुन,
और फिर चर्चा करेंगे अमरीका के भूतपूर्व न्याय मंत्री रमसी क्लार्क द्वारा ईरान को लेकर दिए गए बयानों पर।
A very important country in the world.
और अंत में चलेंगे कश्मीर, जहां इस राज्य में एक बार फिर कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है।
महामारी ने पूरे भारत के हेल्थ सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है।
तो सबसे पहले चलते हैं फिलिस्तीन और बात करते हैं ज़ायोनी शासन द्वारा पवित्र महीने रमजान में भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए बंद किए गए मस्जिदुल अक्सा के द्वार के बारे में। इस संबंध में मस्जिदुल अक्सा फिलिस्तीन से IRIB के संवाददाता खालिद सबरना एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथ ही قائم رزوی کی آواز میں۔
تنام العواصم العربیہ وتصح القدس على مواجهة،
جب عرب دیش راتوں کو سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، بیت المقدس شہر میں فلسطینی جنتا راتوں میں اسرائیلی سینکوں کے اتیاچاروں کا سامنا کرتی ہے۔ سحری میں جاگنے والے بیت المقدس شہر میں لوگوں کو زائونیوں کی سازشوں کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی چیتاونی دیتے رہتے ہیں۔ پچھلی رات بیت المقدس شہر میں اشانتی رہی، دسیوں لوگ گرفتار اور گھائل ہوئے۔ زائونی شاسن نے پوتر رمضان مہینے کے دوسرے جمعے کو بھی بیت المقدس کے پرویش دواروں کو بند کر دیا اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے فلسطینی مسلمانوں کو روکا۔ ان کی شرط یہ ہے کہ مسجد الاقصی میں کیول وہ ہی لوگ جائیں گے جن کے پاس مسجد میں پرویش کے لیے پرمان پتر ہوگا۔ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری کٹھنائیوں کو سہن کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی شمتا کے انوسار صبح، دوپہر اور رات کی نماز کے لیے یہاں پر آئے، تاکہ مسجد الاقصی کی سرکشا کے لیے اتیاچاری زائونی شاسن سے مقابلہ کیا جا سکے۔
اعداد قلیلۃ،
زائونی شاسن نے بیت المقدس میں رہنے والے فلسطینیوں کی بہت چھوٹی سی سنکھیا کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں جا سکے۔ وہیں پر ویسٹ بینک کے رہنے والے کچھ مسجد الاقصی میں پرویش کرنے میں سفل ہو گئے ہیں، لیکن غزہ کے لوگ پوری طرح سے ویسٹ بینک اور مسجد الاقصی میں جانے سے ونچت رہ گئے ہیں۔
مسجد الاقصی هذا،
مسجد الاقصی ایک پوتر استھل ہے، اس کا سمبندھ دنیا بھر کے مسلمانوں سے ہے، نہ کیول فلسطینیوں سے۔ یہ دنیا کے سبھی مسلمانوں کے لیے مبارک ہے، ان کا بھی مسجد الاقصی میں ادھیکار ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ پوتر جہاد، پرتیرود اور شہادت کے ذریعے اس کی رکشا کرے۔ انہیں مسجد الاقصی کو نہیں بھولنا چاہیے۔
وتشهد القدس،
بیت المقدس سڑکوں کو بند کیے جانے اور سینیہ واتاورن استھاپت کیے جانے کی وجہ سے راتوں میں ہونے والی جھڑپوں کا ساکشی ہے۔
خالد صبرنا، خبر گزاری صدا وسیما من المسجد الاقصی فلسطین۔
اور اب چلتے ہیں یمن، جہاں سعودی عرب کے پاشوک حملوں اور امانوی گھیرہ بندی کا یمنی سینا لگاتار منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اس بارے میں سنا سے IRIB کے سمباددادا عبداللہ علی یوسفی ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد علی قمی کی آواز میں۔
عملیت عسکریت فدت القوت،
یمنی سینا نے اپنی جوابی کارروائی میں دکشن پشچم سعودی عرب کے جیزان میں استھت آرامکو ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ یمنی سینا کے پروکتا نے بتایا ہے کہ خمیس مشیت علاقے میں استھت ملک خالد ایئر بیس کو بھی K2 نامک ڈرون ویمانوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تیسرے حملے میں سماتی نامک ڈرون سے جیزان استھت آرامکو ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔
في العمق السعودي بهذه الضربات اننا،
ہم سعودی عرب کے بھیتر کی جانے والی اس جوابی کارروائی کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دشمنوں پر راجنیتک، آرتھک اور سینیہ دباؤ بنا کر انہیں ان کے پاشوک حملوں اور اتیاچار پورن گھیرا بندی سماپت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ جیسے جیسے ہماری جوابی کارروائی میں وردھی ہوگی، ویسے ویسے دشمنوں کی ارتھ ویوستھا کو ادھک نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمنوں کا جیت پراپت کرنے کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا۔ یمنی سینا کی میزائلیں اور ڈرون دشمنوں کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں۔
یاتی الہجوم الاخیر علی ارامکو بعد عملیت
ارامکو پر بالکل ویسا ہی حملہ کیا گیا جیسا کچھ دن پہلے ہی جیزان میں کیا گیا تھا۔ یہ حملہ ملک خالد ایئر بیس پر کی گئی کارروائی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انجام پایا۔ اس حملے میں ارامکو ریفائنری میں بھیشن آگ لگ گئی۔ جیزان میں استھت ارامکو ریفائنری میں جو یمنی سینا کی ڈرون اکائی نے کارروائی کی ہے، اس کے بعد اور بھی جوابی کارروائی ضرور ہوگی، کیونکہ یمنی سینا جانتی ہے کہ یہ ریفائنری اور انیہ مہتوپورن کمپنیاں اور سنویدنشیل ٹھکانے آل سعود کی جان ہیں، جس کے بل پر وہ یمنیوں کا خون بہا رہا ہے۔ ان کو شتی پہنچنے سے آل سعود شاسن کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ یدھ روکنے پر مجبور ہو جائے گا۔
وسائل اعلام سعودیہ تؤكد
سعودی میڈیا نے ان سنویدنشیل ٹھکانوں پر حملے کی بات کو سویکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے حملے کو ناکام بنا دیا ہے، لیکن یمنی سینا نے بل دیا ہے کہ اس کارروائی میں سبھی لکشیوں کو سفلتا پوروک نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی شہید سماد کی شہادت کی تیسری برسی کے موقع پر ویاپک جوابی کارروائی کی چیتاونی بھی دی۔
عبداللہ یوسفی، خبر گزار، سیدا وسیم، صنعاء۔
اور اب چلتے ہیں امریکہ، جہاں اس دیش کے بھوتپور نئے منتری رمسی کلارک نے اپنے نیدھن کے کچھ ہی دن پہلے ایران کے پرمانو سمجھوتے اور امریکی راشپتیوں کی پول کھول کر رکھ دی ہے۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں یو این کاریالے سے آئی آر آئی بی کے سمواددتا کامران نجب زادے، ہمارے ساتھی محمد مہندی کی آواز میں۔
دا ٹرائل آف دا شکاگو 7 ایک ایسی فلم جس میں مائیکل کیٹان نے رمسی کلارک کی بھومکا نبھائی ہے۔ بھوتپور امریکی اٹارنی رمسی کلارک امریکی اتہاس کے حالیہ دشکوں میں ایک بہت ہی پرسدھ اور سب سے وواداسپد منتری رہے ہیں، جن کا کچھ ہی دن پہلے 93 ورش کی آیو میں اسی گھر میں ندھن ہو گیا تھا۔ یہ ہماری انتیم بات چیت ہے امریکہ کے بھوتپور نیائے منتری کے ساتھ، جس میں انہوں نے کروڑوں ایرانیوں کے خلاف لگے پرتیبندھوں کا ورودھ کیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے شانتی پورن پرمانو کاریکرم کے راستے میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ ایران دنیا کا ایک بہت ہی مہتوپورن دیش ہے، مضبوط اور شانتی پورن سمبندھوں کے ساتھ ساتھ سمانتا کا ادھیکار چاہتا ہے تاکہ دشمن غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ ایران جیسے دھنی شکتیشالی اور پربھاوشالی دیش کے ساتھ سمبندھ اچھے کرے۔ اگر سمجھوتا ہی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں دنیا سے پرمانو ہتھیاروں کے نشٹ کیے جانے کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا؟ ہم نے کسی بھی امریکی راشٹرپتی کو نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کا سمجھوتا کرنے کے بارے میں سوچتا، بلکہ سب کے لیے ودیش نیت میں ایران ویرودھی لابی دوارا پہلے سے طے کی گئی گائیڈ لائن اہم رہی ہے۔ ہم سوئم کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بتاتے ہیں، جبکہ اس سچائی کو پراپت کرنے میں ابھی بہت لمبا راستہ باقی ہے۔ ابھی یہ ستہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو دولت کے ذریعے اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہیں اور چناؤں کے نتیجوں کو اپنے پکش میں کرتے ہیں۔ رمسی کلارک کی زندگی پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کارکال اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے۔ رمسی کلارک نے 13 ورشوں پہلے संयुक्त राष्ट्र संघ से ऐसा पुरस्कार प्राप्त किया था कि उससे पहले वो पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को ही मिला था।
कामरान नजफ़ज़ादा, खबरगुज़ारी सदा सीमा, सازمان ملل۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا اور چلتے ہیں کشمیر، جہاں ایک اور پورے بھارت میں کورونا مہاماری کو لے کر ہاہاکار مچا ہے، وہیں اس دھرتی کی جنت کشمیر میں بھی کووڈ-19 کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس بارے میں وسترت جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سمواددتا سپت محمد حسن۔
پورے بھارت ورش میں کورونا وائرس کے جس طرح سے پازیٹو ویکتیوں کی سنکھیا میں بڑھوتی ہو رہی ہے اور اس مہاماری نے پورے ہیلتھ سسٹم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگرچہ نئی دہلی پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہیں، پرنتو زمینی استھتی انتہائی گمبھیر دکھائی دے رہی ہے اور دیش کے ہر چھیتر سے جس طرح سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ پرشنچن بنا ہوا ہے۔ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली की मौजूदा सरकार हेल्थ के हवाले से गंभीर नहीं है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीति को महामारी पे तरजीह दी, परंतु प्रशासन ने इसका खंडन किया। इधर जम्मू कश्मीर में भी इस महामारी की जद में आकर लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी स्थिति इंतहाई गंभीर दिखाई दे रही है। प्रशासन ने आज श्रीनगर के भिमना में 3 कॉलियों को कम्प्लीटली सील कर दिया है, और वहाँ के निवासियों से ये कहा कि वो अपने घरों से बाहर न आए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या एकदम बढ़ गई है, जिसके चलते प्रशासन ने इस क्षेत्र को ही सील कर दिया है। इस अवसर पर हेल्थ अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक आज यहाँ इस HIG कॉलोनी और उस्मानिया कॉलोनी और दूसरा यहाँ पे है कमरवारी कॉलोनी जो है हमारी बैंक में 9 केसेस और यहाँ भी बहुत सारे केसेस आए हैं पॉजिटिव केसेस। उस हुक्म के मुताबिक हमने यहाँ बैरिकेडिंग की है और 300 दायरे के मुताबिक हमने ये सील किया सारा एरिया।
इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से कहा है कि वो सावधान रहें और उन नियमों का पालन करें जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनके लिए इशू किए हैं। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि पिछले 24 घंटों में 19 व्यक्ति इस महामारी से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या भी 2000 के निकट बताई जाती है। जो ये नई लहर वजूद में आई है, इससे जम्मू कश्मीर में स्थिति इंतहाई ज्यादा गंभीर हुई है और लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है पवित्र महीने रमजान के मौके पर रेडियो हिंदी तेहरान से पेश किए जा रहे विशेष कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी।
ईश्वरीय आतिथ्य।
दोस्तों, रमजान के पवित्र महीने का विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना आत्मनिर्माण का महीना है। ये वो महीना है जो इंसान को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने आप को खोजे और ईश्वरीय मार्ग में कदम उठाए। इस महीने की विशेष उपासनाओं में से एक रोजा है। रोजे में कुछ विशेषताएं हैं जो अन्य उपासनाओं में नहीं हैं। ये उपासना इतनी विशेष है कि ईश्वर इसके बारे में कहता है, रोजा मेरे लिए और मैं ही इसका प्रतिफल दूंगा। इस उपासना के विशेष होने का एक कारण शायद वो निष्ठा है जो रोजे में रखी गई है।
अन्य उपासनाओं के विपरीत जो लोगों की आंखों के सामने अंजाम दी जाती हैं, रोजा एक छिपा हुआ काम है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो रुकू और सजदे से पता चल जाता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। खुम्स, ज़कात और दान इत्यादि में ही ऐसा ही होता है, क्योंकि कम से कम उस व्यक्ति को तो पता चल ही जाता है जिसे दान दिया जाता है। हज, जिहाद और दूसरी उपासनाएं भी ऐसी ही उपासनाएं हैं, लेकिन रोजे में कोई भी शारीरिक काम या विदित दशाएं नहीं हैं, और जब तक खुद इंसान ये न कहे कि वो रोजे से है, तब तक कोई भी उसके विदित रूप से ये नहीं समझ सकता कि वो रोजे से है।
دوستو، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ بندے اور اس کے رچیتا کے بیچ کی عبادت ہے، اس سے رچیتا کے علاوہ کوئی اوگت نہیں ہوتا اور پالنہار کے علاوہ کوئی اس کا پرتیفل نہیں دیتا۔ قرآن مجید اور پیغمبر و ان کے پریجنوں کی حدیثوں کے انوسار ایشور سبھی اچھے کرموں کا پرتیفل دیتا ہے، لیکن وہ روزے کے بارے میں جو اس طرح فرماتا ہے تو اس کی وجہ اپاسناؤں کے بیچ روزے کا وشیش استھان و نشٹھا کے استھان تک انسان کے پہنچنے میں روزے کا پربھاؤ ہے۔
روچک بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے ایک مشہور بھاشن میں روزے کے واجب ہونے یعنی اس کے انیواری ہونے کے بارے میں کہتی ہیں، ایشور نے روزے کو نشٹھا کی استھاپنا کے لیے بنایا ہے، اس آدھار پر اگر کوئی ویکتی پورے دن ایکانت میں سب کے سامنے اور پرتیکش یا پروکش روپ سے روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کی نشٹھا کی نشانی ہے، اور اس کا فائدہ نیت کی نشٹھا، خیاتی، پریم سے دوری اور لوگوں کے بیچ وشوسنیتا حاصل کرنے کا ابھیاس ہے۔
روزہ توڑنے والی باتوں میں سے ایک پانی میں پورا سر ڈبانا ہے، اس طرح اگر کوئی نل یا شاور کے نیچے سر دھوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزے دار ویکتی جان بوجھ کر اپنا پورا سر پانی کے اندر لے جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے سر پانی میں ڈالتے سمے اس کا شریر پانی کے اندر ہو یا اس نے اپنا شریر پانی سے باہر نکال لیا ہو۔ اگر وہ اپنا آدھا سر پانی میں ڈالتا ہے اور آدھا پانی سے باہر رہتا ہے اور پھر سر پانی سے باہر نکال لیتا ہے اور بعد میں وہ آدھا بھاگ پانی میں ڈالے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر اس کا پورا سر پانی کے اندر ہو اور صرف کچھ بال پانی کے باہر ہوں تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات بھی الیکھنی ہے کہ کسی برتن وغیرہ سے سر پر پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اگر روزے دار کو شک ہو جائے کہ اس کا پورا سر پانی کے اندر گیا تھا یا نہیں تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر وہ اچانک پانی میں گر جائے اور اس کا پورا سر پانی میں ڈوب جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے ترنت اپنے سر کو پانی سے باہر نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی ویکتی یہ بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور اپنا سر پانی کے اندر لے جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی اسے یہ بات یاد آ جائے ترنت ہی اپنا سر اسے پانی سے باہر نکال لینا چاہیے۔
کچھ دھرم گروؤں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی گوتا خوری کے وشیش کپڑے پہن کر پانی میں چلا جائے اور اس کا نہ تو شریر گلا ہو اور نہ ہی سر تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن کچھ انیہ دھرم گروؤں کا کہنا ہے کہ گوتا خوری کے وشیش کپڑے پہن کر بھی اگر کوئی اپنا پورا شریر اور پورا سر پانی کے نیچے لے جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سوئمنگ کی ٹوپی اور چشمہ لگا کر پانی کے نیچے تیرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے پانی سر تک نہ پہنچے تب بھی۔
دوستو، ہم سب کی بہت سی ضرورتیں ہیں جن کے پورا ہونے کی ہم نے آشا باندھ رکھی ہے، لیکن نشچت روپ سے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کسی ایک کام کے لیے آپ نے بار بار دعا کی ہوگی لیکن وہ کام اب تک نہیں ہوا۔ نشچت رہیے کہ ایشور ہمارے لیے جو چاہتا ہے وہ اس چیز سے کہیں بہتر ہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ساری باتوں کے انجام سے بھی اوگت رہتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ شورا کی آیت سنکھیا 36 میں ایشور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے، جو کچھ تمہیں پردان کیا گیا ہے وہ سانسارک جیون کے کچھ دن کا سامان ہے، اور جو کچھ ایشور کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ٹکاؤ بھی ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے وشیش ہے جو ایشور پر ایمان لائے اور اپنے پالنہار پر بھروسہ کرتے ہیں۔
ایشور اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ اپنے پریا بندوں کی آواز زیادہ سے زیادہ سنیں، اس لیے بنا تھکے ہوئے نرنتر دعا کرنی چاہیے اور اننیہ و سکشم ایشور کی دیا کی اور سے آشاوان رہنا چاہیے۔ جب آپ بھی یہ چاہیں کہ آپ کا پریا آپ سے بات کرے اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ دیاوان ایشور نے کس طرح اپنے بندوں سے بات کی ہے، تو قرآن مجید کی پرکاشمان اور آتما کو جیون پردان کرنے والی آیتوں کی تلاوت کیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، جو بھی کسی دروازے کو لگاتار کھٹکھٹاتا رہے گا اور آگرہ کرتا رہے گا تو انتتا وہ دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر امام جعفر صادق علیہ السلام ایشور کی سوگند کھا کر کہتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنی کسی ضرورت پر آگرہ کرتا ہے تو ایشور اسے پورا کر دیتا ہے۔
دوستو، ابو حمزہ صومالی، جوشن کبیر اور انہی جیسی دعائیں جو سامان دعاؤں سے زیادہ لمبی ہیں، واسطو میں ہمیں دعاؤں پر آگرہ اور سننے و دیکھنے والے ایشور سے بات چیت کا نمنترن دیتی ہیں۔ آئیے دعائیں ابو حمزہ صومالی کے کچھ انیہ واقعوں کے مادھیم سے ایشور کو ہم پکارتے ہیں۔ ہے ایشور، تو بھلے کرم کرنے والا ہے جبکہ ہم کرمی ہیں۔ جو سوندر تیرے پاس ہے اس کے مادھیم سے تو ان برائیوں کو شمع کر دے جو ہمارے پاس ہے۔ ہے میرے پالنہار، وہ کون سی اجانتا ہے جسے تیری مہانتا و کرپا چھپا نہ لیتی ہو؟ کون سا سمے ہے جو تیری مہلت سے ادھک لمبا ہو؟ تیری انوکمپاؤں کے مقابلے میں ہمارے کرم کتنے مولیہ ہین ہیں؟ کس طرح ہم اپنے کرموں کو ادھک سمجھیں کہ ان کے مادھیم سے تیری کرپا کی برابری کر سکیں؟ یہ سمبھو نہیں ہے۔ ہے شمع کرنے والے، جس کی شمع ویاپک ہے، کس طرح تیری دیا کم ہو سکتی ہے جو پاپیوں کو اپنا پاتر بناتی ہے؟ یہ دیا کے کھلے ہاتھوں والے، ہے میرے سوامی، تجھے تیرے سمان کی قسم، اگر تو مجھے دھتکار دے گا تب بھی میں تیری چوکھٹ سے دور نہیں جاؤں گا اور تیری پرشنسا کرنا بند نہیں کروں گا۔ اس پہچان کے کارن جو تیری دانشیلتا و کرپا کے بارے میں مجھے ہو چکی ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے دنڈت کر سکتا ہے، جس پر چاہے دیا کر سکتا ہے، اور کوئی بھی تجھ سے تیرے کسی بھی کام کا کارن نہیں پوچھ سکتا۔ تیرے شاسن میں کوئی تجھے چنوتی نہیں دے سکتا، تیرے کام میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، تیرے فیصلے میں کوئی سہبھاگی نہیں ہو سکتا، تیری یکتی پر کوئی کبھی تجھ پر آپتی نہیں کر سکتا، کیونکہ سرشٹی اور آدیش تجھ سے وشیش ہیں اور برہمانڈ کا پالنہار ہر پرکار کے دوش و اوگن سے پوری طرح سے پوتر ہے۔
تو دوستو، دعائے ابو حمزہ صومالی کے ان واقعوں کے ساتھ رمضان کے مہینے کے وشیش کارکرم کی یہ کڑی یہیں پر سماپت ہوئی۔ کل بھی ہم ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ نیا سویرا۔
دوستو نیا سویرا کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
मित्रों, हमारी दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो प्रकृति की आवाज, बौद्धिक तर्कों और संसार तथा मनुष्य के निर्माण के चमत्कारों पर ध्यान दिए बिना पूर्वाग्रह या ज्ञानता के कारण ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। अमरीकी लेखिका और कलाकार डैनियल लोडुका भी ऐसी ही हैं। खुद उनका कहना है कि मैं अहंकार के साथ ये सोचती थी कि मेरे जैसे विचार निश्चित रूप से धार्मिक व्यक्तियों के स्तर के ऊपर हैं। उनका एक ईसाई घराने में जन्म हुआ था, इसके बावजूद उनका मानना यह था कि न सिर्फ ईसाई धर्म से बल्कि हर धर्म से उनका मोह भंग हो चुका है।
डैनियल कहती हैं, अगर मुझे लाखों डॉलर भी दिए जाते तो मैं सिर्फ इस धर्म को बल्कि किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अमरीकी लेखिका का वैज्ञानिक अहंकार और ब्रह्मांड के तथ्यों की अवहेलना यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो धर्मों की असत्यता और झूठ को साबित करने की कोशिश करने लगी। वो कहती हैं, मेरे लिए ये सोचना काफ़ी नहीं था कि धर्म के बिना एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, बल्कि मैं ये साबित करना चाहती थी कि धर्म एक झूठ और धोखा देने वाले मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस बात को साबित करने का प्रयास कर रही थी।
इतिहास में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने ईश्वर और धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्हें इंसानी सोच का नतीजा करार दिया, लेकिन वे ईश्वर के वजूद और उसके धर्म का इनकार करने में सफल नहीं हो सके और उनके दृष्टिकोण को धार्मिक बुद्धिजीवियों, विशेष रूप से मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने तर्क द्वारा रद्द कर दिया।
डैनियल ने भी धर्म को नकारने के उद्देश्य से विभिन्न धर्मों और मतों का अध्ययन शुरू किया। इस बारे में वे कहती हैं, मैंने ये साबित करने का इरादा किया कि धर्म मनगढ़ंत चीज़ है। उन्होंने धर्मों के बारे में अध्ययन शुरू किया और सबसे पहले उनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। उनका दावा है कि उन्होंने निष्पक्ष होकर ऐसा किया इसलिए कि उस समय वो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखती थीं। वो कहती हैं, वास्तव में धर्मों के मनगढ़ंत होने का मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक धारणा थी जिसके लिए मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं था।
हालांकि कुछ धर्मों में विरोधाभास और अंधविश्वासों को खोजना उनके लिए कोई विशेष मुश्किल काम नहीं था। स्पष्ट है कि हिंदुत्व और बौद्ध धर्म, जो ईश्वर की ओर से नहीं है, विभिन्न आपत्तियों से भरे पड़े हैं और ईसाई तथा यहूदी धर्म भी सदियों पहले बदलाव का शिकार हो चुके हैं। इसलिए इन धर्मों में कोई कमजोर बिंदु खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस बात पर आश्चर्य जताती हैं कि इन धर्मों के मानने वाले अपनी पवित्र पुस्तकों के विभिन्न संदेहों और आशंकाओं के बावजूद उनका अनुसरण करते हैं।
डैनियल के अनुसार ये दिलचस्प है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों, विशेष रूप से गैर इस्लामिक धर्मों के मानने वालों के साथ बातचीत में मैं अक्सर इस नतीजे पर पहुंची कि वे सिर्फ आस्था में दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था कि उनके पवित्र ग्रंथों में विरोधाभास है, बल्कि वे उसे किसी तरह से सही ठहराते थे और अपनी आस्था को बचाए रखते थे। वे धर्मों के अनुयायियों की कम जानकार की आलोचना करते हुए कहती है, मैंने कम ही ऐसे लोगों को देखा कि उनकी पवित्र पुस्तक ने उन्हें धर्म को स्वीकार करने के लिए संतुष्ट किया हो, बल्कि पहले उनमें आस्था पैदा हुई जिसके बाद उन्होंने धार्मिक पवित्र पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, वे सिर्फ उन विश्वासों के साथ बड़े हुए थे।
दो दोस्तों, दूसरे धर्मों के विपरीत इस्लाम अपने अनुयायियों से कहता है कि सबसे पहले अपने मूल विश्वासों की नींव तर्क के आधार पर रखो। दूसरी ओर मुसलमानों के बीच धार्मिक ग्रंथ कुरान पढ़ने का चलन भी है। कुरान अपने पढ़ने वालों से कहता है कि वे उसकी आयतों में चिंतन करें, इसलिए कि वो अंतिम ईश्वरीय पुस्तक है जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुरान में मूल्यवान बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, इसी वजह से उसे इस्लाम का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जाता है। कुरान की महानता और आकर्षण के बावजूद पश्चिम में इस्लाम विरोधी माहौल के कारण डैनियल को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और हो सकता है कि इस्लाम का अध्ययन करने में उनकी कोई रुचि भी ना हो।
अचानक कहीं से उन्हें कुरान मिल गया, जैसा कि उनका कहना है। मैं विश्वविद्यालय के सामने से जा रही थी, मैंने देखा कि इस्लामी संगठन के सदस्य छात्रों ने एक मेज पर कुरान रखे हुए हैं और वे उसमें रुचि रखने वालों को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे पूछा, क्या ये फ्री है? जब उन्होंने कहा हाँ, मैंने एक कुरान उठाया और अपने रास्ते चल पड़ी। मेरी उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ फ्री मिलने वाली इस किताब से मैं धर्मों का अध्ययन करना चाह रही थी और उसे झूठा साबित करने के अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो किताब उन्होंने ली है वो उनके दृष्टिकोण और जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी।
डैनियल ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही वो इस ईश्वरीय चमत्कार से प्रभावित हो गई। वे कहती हैं कि जितना अधिक मैं कुरान को पढ़ती थी और उसके पेज पुराने होते जाते थे, मुझ पर उसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता था और मैं दूसरी धार्मिक किताबों से दूर होती जा रही थी। आसानी से ये बात मैं समझ चुकी थी क्योंकि मेरे लिए सब स्पष्ट था। क्योंकि वो दूसरे धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ चुकी थी, इसलिए समझ चुकी थी कि कुरान उनके पूर्ण रूप से अलग है और ये ईश्वर का सीधा संबोधन है।
डैनियल कुरान के बारे में कहती है, ऐसा लगता था कि कुरान मुझसे सीधे बात कर रहा है और मेरे सवालों के जवाब दे रहा है। ये एक पुरानी किताब है लेकिन वर्तमान के अनुकूल है। संतुलन, चित्रण और मेरे साथ बातचीत के तरीके ने मुझे काफ़ी रोमांचित किया। ये शुद्ध सौंदर्य था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सिर्फ कुरान की सुंदरता और आकर्षण ने उन्हें प्रभावित नहीं किया था, बल्कि इस ईश्वरीय पुस्तक में किसी खामी के न होने ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। जैसा कि वो कहती है, कुरान मेरी बुद्धि के लिए बहुत आकर्षक था। वो इंसान का सृष्टिकर्ता के ज्ञान के साथ साथ संयम, दया और विनम्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। कुरान ने निशानियां और जानकारियां दी, उसके बाद मुझसे कहता था कि मैं चिंतन करूं और मूल्यांकन करूं। ये पवित्र किताब अंधविश्वास को खारिज करती है, उसके विपरीत तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित करती है।
इस तरह से इस अमरीकी अधर्मी लेखिका ने इस्लाम का गंभीर रूप से अध्ययन किया और कई किताबें पढ़ी। इसी के साथ धार्मिक सभाओं में भी उन्होंने भाग लिया। पैगंबर इस्लाम के बारे में अध्ययन करते समय वो एक दिलचस्प बिंदु पर पहुंचती हैं। उनके अनुसार मैंने नया रास्ता तय करना शुरू कर दिया था जिसका मार्गदर्शन चमत्कारी कुरान ने किया था। आदर्श पैगंबर इस्लाम की हस्ती थी। इस हस्ती में झूठ और भटकाव का कोई संकेत नहीं था। वे रातों की इबादत के दौरान उन लोगों के लिए क्षमा याचना करते थे जो उन पर अत्याचार करते थे। वे विनम्रता को प्रोत्साहित करते थे। ईश्वर के शुद्ध संदेश को पहुंचाने के लिए उन्होंने धन, शक्ति और सहारे की कोई परवाह नहीं की, बल्कि सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करते हुए सभी कठिनाइयों को सहन किया।
दोस्तों, डैनियल इस्लाम के बारे में इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम में समझने के लिए कोई चीज़ जटिल नहीं है, बल्कि सब कुछ बहुत सरल है। हमें पैदा किया गया है, हमारे निर्माण में इतनी जटिलता और विविधता स्वयं ही पैदा नहीं हो गई है। इसलिए जिस एक हस्ती ने हमें पैदा किया है, हम उसका अनुसरण करें। यह बहुत ही स्पष्ट सी बात है। इस तरह से डैनियल ने सत्य को स्वीकार कर लिया और इस्लाम का चयन किया।
ये नई अमरीकी मुसलमान महिला इस्लाम स्वीकार करने के क्षणों का इस प्रकार विवरण करती है। पतझड़ की एक रात थी, लाइब्रेरी बंद हो गई थी। मैंने ढेर सारी जो किताबें पढ़ी थी उन्हें वहीं छोड़ा और अपने घर वापस लौट गई। लेकिन जिस सवाल के बारे में मैं सोचती थी कि इसका कोई जवाब नहीं है, उसका मुझे जवाब मिल गया था। उस वक्त तक मैंने जो प्रयास किए थे, जैसे कि यात्रा, बातचीत, एक के बाद दूसरी किताब का अध्ययन, उसका फल मिलने वाला था। क्या मुझे जो सही जानकारी प्राप्त हुई है मैं उसकी गवाही दे सकती हूँ, या जो बड़ी खोज मैंने की है उसे अनदेखा करके सामान्य जीवन जारी रखूं?
इस्लाम के खजाने को स्वीकार करने की स्थिति में उसके प्रति एक जिम्मेदारी होगी, या फिर ऐसा जाहिर करूं कि मैंने उसकी कभी खोज ही नहीं की। मुझे उसका जवाब मालूम था। फुटपाथ पर एक लैम्प के नीचे रुक गई और अपने पालनहार से बात की। पहली बार एहसास हुआ कि वो वहाँ है और मेरी बात सुन रहा है, और उसे पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अपने होठों को हिलाने के लिए मजबूर नहीं थी ताकि कलमा पढ़ूं। मैं गवाही देती हूं कि ईश्वर के अलावा कोई, जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, इबादत के योग्य नहीं है, और मोहम्मद उसके बंदे और दूत हैं। इस तरह से मैं मुसलमान हो गई। ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय था। मेरे सबसे सुंदर और खुशहाल जीवन की शुरुआत हो गई। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उससे कहीं अधिक मुझे शांति और खुशी प्राप्त हुई। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा सुन रहे थे। हमें आशा है कि हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आया होगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir, जबकि हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हसन अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।